मैं हूँ डॉक्टर खलील और हम आज जो वीडियो सीरीज़ है हमारी मुकालमा सब के साथ, उसमें अब्बास मूसवी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारी जो ये सीरीज़ है इसका ख़ास फोकस है निजकारी में ताखिर क्यों हो रही है, निजकारी में देर क्यों हो रही है। अब्बास मूसवी जो हैं वो जो बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड, उसमें रिसर्च फेलो हैं और इनकी जो बैकग्राउंड है वो है गवर्नेंस की, डेवलपमेंट की और पॉलिटिकल इकोनॉमी की। और इससे भी ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है इनके अब्बास मूसवी के पास, पाइड का बड़ा ही प्रेस्टिजियस एक रिसर्च मैगज़ीन है जो बाई मंथली है, डिस्कोर्स नाम का, और अब्बास मूसवी जो हैं उसके एडिटर इन चीफ भी हैं। और ये मैगज़ीन भी डिस्कोर्स जो है इसका फोकस भी एक तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी पर है। और फिर जो अब्बास मूसवी जो हैं वो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो अखबार है उसके कॉलमिस्ट भी हैं एक, और इन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है, यूएसएड के साथ काम किया है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है उसके साथ काम किया है, और फिर एजुकेशन एबव ऑल फाउंडेशन जो है उसके साथ भी काम किया है। तो हम आज अब्बास मूसवी के साथ बात करेंगे। तो मैं इनके सामने सबसे पहले यही सवाल रखता हूँ कि एक बड़ा ही जो इशू है और जिसे हम अगर एड्रेस करें, जो एक तरह से एसेंस भी बनता है, जहाँ पे आके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ से जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है
जी।
वो है कि क्या, और पूरी दुनिया हमारे सामने है, कंट्रीज़ मुख्तलिफ हैं और फिर हिस्ट्री भी है हमारे सामने, कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कितना एफिशिएंट, गवर्नमेंट पहला सवाल ये कि क्या गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है और अगर हो सकती है तो कितना एफिशिएंट हो सकती है। जी प्लीज़।
अच्छा, तो गवर्नमेंट का ये होता है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की प्राइमरी इंसेंटिव जो है, इट इज़ द प्रॉफिट मोटिव, दैट इज़ द फैक्टर दैट कीप्स थिंग्स एफिशिएंट एंड दैट कीप्स थिंग्स फंक्शनल एंड दैट इंश्योर्स दैट एवरीबॉडी दैट इज़ इन्वॉल्व हैज़ द इंसेंटिव्स टू कंटिन्यू टू रिफाइन देयर ऑपरेशंस एंड कीप रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह जो है गवर्नमेंट में जो है द प्राइमरी इंसेंटिव इज डेमोक्रेटाइजेशन, व्हिच एसेंशियली जस्ट मींस कि अगर एक गवर्नमेंट है, देयर इज अ सेट ऑफ रूलिंग एलीट्स, what is their primary incentive to perform? If you have a democratic system in place, then their primary incentive to perform is the prospects of coming back into power for subsequent terms, because they will be assessed purely on the basis of their performance, which is the citizenry. So, jo unka primary incentive yehi hota hai ki agar jo log hain the citizenry, unki agar unko services mil rahe hain, unko sahuliyat mil rahi hai, to wo ye cheezein dekh rahe hain, wo ye cheezon se benefit kar rahe hain. Aur wo if it is a truly a democratic system, to wo jab election cycle pe se hogi, they will vote them back into power. Agar unki performance hoti hai, agar nahi hoti, to phir they will be voted out. They will be replaced by some other party or some other grouping, collective, jo bhi hai. And that is what keeps the system running from a governance point of view, from the democratic side.
Running in an efficient manner.
Manner. And we have several examples of this across the world. Pakistan ke case mein, I would argue ki jamhooriyat ki baat to badi hoti hai siyasat mein and so on. Lekin we never really pursued that in true spirit. Jis tarah agar hum India se bhi hum agar compare karein, to jo Nehru ki administration aayi thi following independence, they conducted various initiatives to ensure that there was a higher level of competition in the political sphere. And they did this how? They did this through land reform. They did this by investing in their education sector.
Economy ke saath saath politics mein bhi ek competition maujood
hai. Ji bilkul aise hi hai. To unka jo aaj hum dekh rahe hain, unki jo maishi tarakki hai aaj, jo hum dekhte hain IT sector unka bada strong hai, unki education system badi strong hai. They're one of the fastest growing economies in the world, soon to be competing with China even. Isko agar hum iska backdrop देखें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट दैट वेंट इनटू दिस। तो जो 1990 में इनकी प्राइवेटाइजेशन जो हुई थी, दे हैड अ बेस टू वर्क विद, दे हैड अ बेस टू बी कंपेटिटिव। Once they started opening up with their neighboring countries and trading with them, they had the capacity to actually compete and not get completely demolished by their competition. And the reason for that is because
I think you have no problem if I disturb you in the middle.
जी please.
अच्छा, जो आपने मिसाल दी कि इंडिया में जैसे वो उससे पहले जो स्टेट इन्वेस्टमेंट थी, अच्छा मुझे बिल्कुल फौरन याद आता है पाकिस्तान में जो 60s की में मतलब स्टेट की इन्वेस्टमेंट थी, तो क्या आप उसे भी साथ कंपेयर करेंगे उसी तरह?
जो 60s की दहाई थी उसमें जनरल एयू
जिसे वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है,
डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, आल्सो द ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, रेवोल्यूशन
भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस तरह के नाम दिए जाते हैं
जी बिल्कुल। लेकिन मैं आर्ग्यू करूंगा कि वो भी जो है ना प्योरली एक रेंटियर मॉडल पे चल रहा था, क्योंकि वो
अच्छा साथ साथ उसको आप डिफरेंशिएट करते जाइए इंडिया के साथ जरा ना।
जी जी बिल्कुल। तो हमारे सिस्टम में ये हुआ था कि अयूब खान के दौर में जो है फोर्ड फाउंडेशन थी द मेन डोनर एजेंसी जो फंडिंग दे रही थी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, जिसमें वो फर्टिलाइजर्स आ गए थे, ये इरिगेशन सिस्टम्स इंस्टॉल हुए थे, ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए गए थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट इज़ व्हाट फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ
द
एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा। लेकिन उसमें ये हुआ था कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स वर अक्रूइंग टू the big landlords during that time ना, जिनको ज़रूरत नहीं थी उस तरह की assistance की, तो उसकी वजह हुआ ये कि हम premature urbanization की तरफ चले गए।
अच्छा।
And the reason for that, it's because जो landlords थे, the when they started to gain some leverage, they had more power because of the resources that were coming in, उसकी वजह से the exploitation levels in the countryside, in the rural communities actually grew. To the point where economic precarity बहुत ज़्यादा हो गई थी, and a lot of people were forced to abandoned their deep roots in the countryside for cities in search of economic opportunities. Achoo. And that was, I would believe, it was premature urbanization. It was the first major wave in Pakistan, but it was premature. Because it was forced. It wasn't a pull factor, it was a push factor.
अच्छा आपका एक तरह से मैं थोड़ा सा अगर paraphrase करूँ तो जो रूरल एरियाज़ थे उसमें मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई
जी।
अच्छा उससे जो एक तरह से मजदूर फारिग हुए या जो नज़ारे थे
जी।
वो फारिग हुए और वो फिर शहरों की तरफ उन्होंने हिजरत की
जी।
ठीक है ना, ये अर्बन जैसे आप प्री मेच्योर अर्बन माइग्रेशन कह रहे हैं वो हो गई वहाँ पे, और जबकि शहरों में वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, शहरों में अपॉर्चुनिटी उस तरह की मौजूद नहीं थी, और वहाँ पर फिर ये इशू एक पैदा हो गया, मतलब पावर्टी का इशू। और आप मेरा ख्याल है इसी को जोड़ेंगे वो जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ था और जिसको फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने एक तरह से यूटिलाइज किया।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद दैट। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का दौर था, आई डोंट थिंक इट इज़ गिवन इनफ क्रेडिट स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर, क्योंकि जो अगर हम हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे जो रेट्स थी फ्रॉम द 70 to 75 के पीरियड में, इट वॉज आवर हाइस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ दैट वी हैव सीन इन आवर हिस्ट्री। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस लेवल पर कभी नहीं गई, एंड द रीज़न फॉर दैट वॉज बिकॉज
यू मीन आफ्टर द नेशनलाइजेशन,
आफ्टर द नेशनलाइजेशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी
से पहले से हुई हुई थी,
वो पहले से चल रही थी, बट भुट्टो के दौर में इट वेंट अप अ बिट, और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट
स्टेल मिल लगी है, एक बड़ी मिसाल जो
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्तलिफ लाइक सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, वो शुगर एंड सो ऑन, तो उसमें वी सॉ अ लॉट ऑफ रैपिड ग्रोथ, और उसकी वजह से द रीज़न फॉर दैट वाज बिकॉज देयर वाज अ स्टेट फंडिंग दैट वाज गोइंग इनटू दैट, इट वाज अ डेडिकेटेड एफर्ट टू इनक्यूबेटिंग आवर इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट लास्ट सो लॉन्ग, क्योंकि जी
अयूब के दौर में भी स्टेट ही मतलब फंड कर रही है एक तरह से ना
जी,
जो पिकिक है उसके जरिए और भी दूसरे इदारे थे उनके जरिए कर्जे दिए जा रहे थे, हेल्प किया जा रहा था, और मुख्तलिफ तरह की एग्जेम्पशंस और मतलब एक तरह से क्या कहना चाहिए सहूलतें दी जा रही थी, तो उसके नतीजे में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो
जी।
अच्छा उसके बाद भी आप कह रहे हैं स्टेट ने भी इन्वेस्ट किया फिर
जी,
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी नेशनलाइजेशन के बाद भी
फॉर श्योर जी,
तो
जी,
ये दोनों एक जैसे आप समझते हैं या फर्क है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं है इसमें देखा जाए तो, सिर्फ ये कि अब स्टेट ओन्ड है सारी चीजें, इस वक्त स्टेट ओन्ड नहीं थी
जी 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 बिल्कुल
अयूब के दौरान,
श्योर देयर इज दैट डिफरेंस एज वेल, लेकिन एक वो पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो अयूब खान के दौर में the important development was the CETO and CENTO agreements Pakistan went into and the purpose of those agreements were to curtail the rising influence of the USSR at that time, to uski wajah se jo hai ye sari funding aana shuru hui thi, aur ye funding aane ki wajah se phir it was a very ill thought out way of development
Ayub
ke dor mein, it wasn't planned, there was no thought put into it, there was no vision for how we're going to take things forward, किस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किस में कम करना है, इट वॉज वेरी हाफ हैज़र्ड इन इट्स अप्रोच बिकॉज इट वॉज प्योरली अपॉर्चुनिस्टिक, एक अग्रीमेंट में हम आ गए, वी वर गेटिंग क्विक रिटर्न्स फ्रॉम इट, प्योरली रेंटियर सिस्टम,
क्या उस वक्त के जो एग्रीमेंट थे वो पिकी, इस वक्त जो सी पैक के इंप्लीमेंट हो रहे हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी तरह?
फॉर श्योर, आई वुड डेफिनेटली से सो,
क्योंकि सी पैक के बारे में जो मेरा है कि मतलब डेवलपमेंट का मॉडल मैं उससे भी एग्री नहीं करता. और देखिए ना, हमें क्या करना है वो हमें पता है. हम कोई आके हमारी मदद करना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, बिल्कुल करें. हम बताएंगे उसे भी हमें ये चाहिए, यहाँ काम करना है, यहाँ काम करना है, उसमें आए फिर.
बिल्कुल, फॉर श्योर.
लेकिन देखिए, मैं इसमें जो एक ब्लेम है या बर्डन जो है वो चाइना पे मैंने ही डाल रहा है. वो हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिटिशियंस, ये उनकी जिम्मेदारी है. हम किसी को देखें ना बुरा क्यों कहें, हम अपने को बुरा कहें ना, जो हमारे सामने जो हमारे लिए काम कर रहा है, जिसे लोगों ने मैंडेट दिया है,
जी ऑफ कोर्स,
उस पे जिम्मेदारी आती है.
ऑफ कोर्स,
उस वक्त समझे सीधी सी बात है, मतलब एक वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं थी, माशाल्लाह था, युग का जो दौर है उसमें जो हो रहा थी चीज़ें उसकी, मतलब एक प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी. लेकिन एक चीज़ है कि उसमें जिसे हम कहते हैं कि एक जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह हो रही थी उसमें, आप उन्हें कैपिटलिस्ट कह लें, आप उन्हें सरमायादार कह लें, उस वक्त के जो इंडिया से कुछ आए भी थे,
मतलब
माइग्रेशन करके भी आए थे, यहाँ पे आए थे और कुछ यहीं पे भी थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी.
बिल्कुल. हाँ नहीं, फॉर श्योर, आई एग्री, बट इट्स ऑल अ रेंटियर मॉडल इन माई ओपिनियन, बिकॉज लाइक इट्स ऑल रिलायंट ऑन द कंटिन्यूअल रिसीट्स ऑफ दीज फंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दीज आर नॉट वैल्यू न्यूट्रल. ना ये जब आ रही होती है फंडिंग, दीज आर बेस्ड ऑन योर अडियरेंस टू द जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट इज़ फंडिंग यू. और हमारे केस में आई वुड आर्ग्यू, सिंस इंडिपेंडेंस हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. हमारे डेवलपमेंट मॉडल, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स लाइक मिलिट्री डिक्टेटरशिप और हमारे पॉलिटिशियंस हैं, द फंडामेंटल अप्रोच इज़ द सेम, विच इज़ दैट politicians ke daur mein, especially after the 80s and so on, structural adjustments through international financial institutions, the model is the same. You're essentially extracting resources from the global economy for opportunistic ends. A lot of these are in the form of loans that are made to pay for by the ordinary citizenry, the vulnerable communities, indirect taxes ke zariye they're made to be repaid. And there's no thought. There's this one size fit all prescription from IMF or Sahi. World Bank or whatever. Or har country mein, whether it's in South Asia or Sub-Saharan Africa, prescriptions are wahi hota hai. And there's no way that this can be an effective approach.
अच्छा, एक तो चले foreign institutions जब आते हैं या foreign countries जब आते हैं, China समेत,
जी
तो वो यकीनन उनकी अपनी भी priorities होती हैं, कुछ अपना एक पूरा उनका पीछे माइंडसेट होता है, वो क्या करना चाह रहे हैं. अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे जब स्टेट फंडिंग ले रही होती है तो स्टेट प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करती है, एक तो ये इशू हो गया. अच्छा, दूसरा जो अयूब वाला मॉडल है उसमें जब स्टेट फंडिंग ले के आगे जो सरमायेदार हैं उनको दे रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दे रही है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें प्रायोरिटीज, उसमें भी यकीनन कुछ ना कुछ स्टेट का अमल दखल था प्रायोरिटीज तय करने में, जो मतलब जो क्या प्रोजेक्ट्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए. लेकिन ऑन द होल हम अगर ये समझ लें कि जो इन्वेस्टर्स थे, सरमायेदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो तय कर रहे थे कहाँ क्या होना चाहिए. ये एक तो ये कि इसमें जो सवाल एक पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये चीज़ें तय करे कि क्या होना है, तो एक इसमें प्रॉब्लम आ जाती है. प्रॉब्लम मतलब बहुत से मल्टी प्रॉन्ग्ड है प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें, लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं गवर्नमेंट में लोग जो बैठे होते हैं क्या वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना, या दूसरी तरफ जो मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता हो सकता है कि भाई कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए. तो ये यकीन है, अगर हम इस मॉडल को भी थोड़ा सा कंपेयर करें साथ रख के, तो अयूब के दौर में थोड़ा सा ये मॉडल चल रहा है बीच में कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनको फ्रीडम दी जा रही है किसी हद तक कि वो तय करें कि भाई कैसे होना है, ठीक है ना. अच्छा, लेकिन जब नेशनलाइजेशन हो जाती है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट है, उसमें स्टेट या फिर आप कह लें कि अगर तो पॉलिटिकल पार्टी तय कर रही है या फिर ब्यूरोक्रेसी तय कर रही है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना. और सीपैक में तो सीधे से बात है, अब हमें अभी क्लियरली नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हम नहीं तय कर रहे बहुत सारी चीज़ें.
जी बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, इसमें थोड़े डेफिनेशनल भी एक पॉइंट्स हैं मेरे पास कि when we say government or when we say bureaucracy and so on, the assumption is that this is a this is a Leviathan, abstract entity lording over the people that has no connection to the people at all. Now, I think we need to challenge this a little bit because this comes from the neoliberal ideology. A government will be responsive to the needs, desires, grievances of the people if they have an incentive to be. Agar ek political party, agar main ek political party run kar raha hun, toh main apne research wing create karunga. मैं एक वो अपना एकेडमिया के साथ लैंग्वेजेस क्रिएट करूँगा, इंडस्ट्री के साथ करूँगा, टेक सेक्टर के साथ करूँगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट आई विल ओनली डू दैट इफ आई नो कि लोग मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे फिर से वोट देंगे, मैं इफ आई कैन कम बैक इन टू पावर फॉर सबसिक्वेंट टर्म्स. इफ आई डोंट हैव दैट गारंटी, इफ आई डोंट हैव दैट अश्योरेंस, तो फिर मेरे लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं हुआ. इंस्टेड पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि देर आर सर्टन पावर सेंटर्स जिसमें सिक्योरिटी अपराइट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसमें बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रेंट सीकर्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और जो हमारी गवर्निंग एलीट है वो इनको जवाब दे, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. तो ये जो डिस्कनेक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू एक्सप्लोर हाउ वी कैन करेक्ट दिस perverse pathology Pakistan ki. Ji,
shuru mein jo aapne ek paradigm banaya tha, to main thoda sa usi ki taraf wapas jaunga. Aur wo paradigm aapne banaya tha ki jaise maine kaha ki market mein ya jo businessman hai uske liye to जो प्रॉफिट मोटिव है वो इंसेंटिव है उसका.
जी, जी, जी.
तो आपने कहा था ये एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो एक इंसेंटिव हो सकती है, और आपने उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ जोड़ा था. जैसे अभी आपने बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन में होती है और दूसरी चीज़ों से होती है, जो भी वो कर रहे होते हैं उसका. अगर वो कोई एक तरह से हो कि अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन साथ साथ चल रही हो तो वो भी उन्हें पता चल रहा होता है. लेकिन फिर सीधी सी बात है, मैं उस वक्त भी ये बात करने लगा था, आपने खुद अभी ये बात कर दी. देखिए, डिस्कनेक्ट तो बहुत बड़ा बन चुका है.
जी जी बिल्कुल.
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पाकिस्तान के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं.
जी जी.
तो उसमें फिर समझे ये वाला जो है एक कि वो जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है या डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो एक इंसेंटिव बनेगी गवर्नमेंट के लिए, या मतलब वो गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए.
जी.
प्रॉब्लम एक पैदा हो जाती तो फिर क्या इसी. अच्छा, एक तो सीधी सी बात है, हमें नज़र आ जाती भी इसलिए एफिशिएंट नहीं है गवर्नमेंट. एक तो सीधी सी बात है, अकाउंटेबिलिटी लोग नहीं कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी के ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद नहीं है. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किसी और सेंटर के गिर्द घूम रही है.
जी बिल्कुल.
ठीक है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, पोलिटिकल फोर्सेज नहीं है वो.
जी, ऑफ कोर्स.
और उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को, वो जो नेचुरल ग्रोथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की होनी थी वो नहीं हुई.
जी बिल्कुल.
ठीक है ना, तो एफिशिएंसी वाला इशू जो है वो उसको फिर हम कैसे अब डील करें कि गवर्नमेंट में एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं. और सवाल फिर उसके साथ वही जुड़ा हुआ है कि 200 से ज़्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज मौजूद हैं, और जिसमें मेरा ख्याल है तकरीबन 100 के करीब जो है वो कमर्शियल एसओईज हैं.
जी जी बिल्कुल.
जो एक तरह से लोगों के लिए कुछ ना कुछ मतलब प्रोड्यूस कर रही हैं, और पब्लिक डीलिंग भी है, और गुड्स और सर्विसेज इस तरह की हैं उनकी जो लोगों के लिए हैं. लेकिन उनमें तो एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं. चले हम ऐसी एसओईज को छोड़ दें जिनका वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक है या किसी ऐसी चीज़ के साथ ताल्लुक है. अगरचे आप भी जानते हैं कि ऐसे मॉडल दुनिया में मौजूद हैं जहां सारी ही चीज़ें जो हैं प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के की जा रही
हैं. बिल्कुल बिल्कुल.
तो एफिशिएंसी का इशू जो है
जी जी
गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि वो जुड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ हो नहीं पा रही जो या कुछ और वजह है.
देखिए, there's various things you just talked about, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें की. अच्छा, तो आई
हैव आप बिल्कुल एक एक करके जैसे भी.
तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, इफ़ वी हैव एलिमिनेटेड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन आवर सोसाइटी, एक तो ऑप्शन ये है कि हम वी जस्ट गिव अप ऑन दैट एंड वी जस्ट एक्सेप्ट दैट वी डोंट लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड देन वी फिगर आउट हाउ टू डू थिंग्स. I think that is a failing strategy. I think agar democratic norms humne lose kiye, we have to, as a society, as a culture, we have to fight for those. We have to ensure, and we have a lot of figures who actually did that. We have Asma Jahangir's example. We have Benazir's we have to ensure, because democracy is not just ki aap har 5 saal ke baad election mein chale. Democracy means that the day-to-day affairs mein, you have like within corporations, you have trade unions, within rural communities, you have farmers associations, you have land redistribution to not just correct the governance arrangements in those, because the electables ka jo system hai, the way to correct those is by conducting land reform. But you also boost economic output through that. Aapki agricultural productivity badhti hai. China is a great example of this. So you can do various things to ensure day-to-day increased levels of competition within the political sphere. It's not just ki aap elections mein jaate hain. Dusri baat ye thi ki what you mentioned about privatization, right? 200 companies that are still state-owned. On the other hand, however, you're right, but on the other hand, we have also seen the privatization of over 200 companies historically in Pakistan. We have seen this, and it has happened largely as a result of...
banking sector, financial institutions,
public manufacturing enterprises, a lot of which were forced to shut down, actually.
Yeah, this is not
true. Yes, and at that point, why did we do this? It was on the advice of the IMF, our first structural adjustment program, the Washington Consensus, 1989. In that, IMF said that privatize your enterprises, you will ease the pressure on your fiscal account position, aapki inflation rates control ho jayengi, you will move towards a growth, you will move towards a open economy, and so on and so forth. But if you look at the end of that program, which is in 1992 is when it ended, none of their stated objectives actually came true. Now why is that? You know, it's important to ask that question, you know. Kyunki wo log World Bank ka ek bada mazay ka statement hai at that point na, wo ye keh rahe the ki it takes a while for the economy to adjust. This is the adjustment period, or if you give it some time, over time ye sab theek ho jayenge mamle. But unka apna stated objective at the outside of the program was ke is point tak inflation hamara target hai, is point tak hamara fiscal deficit target hai, none of which actually came true. Now jab in logon ke targets fail ho jate hain, they don't take accountability for it, there's no way to hold them accountable for it, wo log kehte hain ki implementation nahi hui hamare policies ki. Now this is, I think, a completely dishonest and approach where you're just avoiding responsibility after what you said isn't coming true or isn't manifesting. You just say ki theek hai aapne fully 100% implementation nahi ki, chale 60% to ki na,
kabhi kabhi bhi nahi hoti, wo to is tarah ki cheezein to nahi hai.
There's this great from the world of philosophy, it's called the no true Scotsman fallacy. Just mean, you know, like if you have a proposal, let's say I say that all Scotsmen like Scotch, for instance, and you say, well, I know this one person who doesn't, you know, and what will I say in that situation? I'll say, oh, that's not a true Scotsman then. So what am I doing here? I'm changing or distorting the original definition because I've been proven wrong, but I'm changing the definition then. Isi tarah, I would say, IMF does the same thing. Okay, nahin, this isn't true privatization.
अच्छा देखिए, एक एक तो चीज़ ये कि फिर वही मैं मतलब इन मामलों में ना मैं बहुत लोकलिस्ट हूँ. लोकलिस्ट इस तरह के मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगा IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ADB को, किसी को ब्लेम मैं नहीं दूंगा भी. लेकिन ये हमारे लोग हैं ना जो जाके डील कर रहे हैं.
जी
देखिए, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, लोग भी कारोबार करते हैं, हम लोन लेते हैं.
जी
अच्छा, यकीन डिपेंड करता है कि आप किन शराइत पे आपका एक तरह से एग्रीमेंट होता है, तो यकीन बारगेन होती है, उसमें चीज़ें होती हैं, उसके बाद तय करते हैं. तो हमें इल्ज़ाम देना चाहिए जो हमारे रूलर्स हैं जिन्हें हम मैंडेट दे रहे हैं कि वो डीलिंग क्या करते हैं. अच्छा फिर ये कि
बट एज वी जस्ट डिस्कस्ड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मैंडेट है इनके पास हमारा, जैसे इट्स अ ग्रेट, क्योंकि हिस्टोरिकली दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, बेनज़ीर केम कमिंग इनटू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस दैट शी वाज गिवन, कि आपने ये IMF प्रोग्राम एक्सेप्ट करना है. If you want to become the prime minister, and we all know who this proposal was from, this is from the security establishment of Pakistan. So agar is tarah ke hamare representatives honge who are compromised from the outset,
jaise bhi hain ab hain to na, dekhiye usme wahi baat hai ki phir ye farz kare koi bhi unhe keh raha hai, establishment keh rahi hai, koi aur keh raha hai, foreign powers agar unhe keh rahi hai bhi aap ye cheez accept karenge to aap iktidar mein aayenge, ye phir कौन जिम्मेदार है इसका? यही जिम्मेदार है ना, या जिस तरह आके मतलब वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, भाई तुम क्यों गए थे, क्यों छोड़ के नहीं आ जाते? लेकिन किसी ना किसी जगह पे आपको फाइट करना होगा, रुकना होगा. अगर आप सिर्फ इख्तियार के मजे लेना चाहते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और जो इस तरह के तकरीबन 70 साल तो गुजर गए, इसी तरह ही गुजर रहे हैं, ये तो इस तरह तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. हमें देखें, हम सीधे से मैं मतलब एक प्रैक्टिकलिटी ये है कि अमेरिका के साथ तो नहीं लड़ सकते जाते IMF से तो नहीं लड़ सकते, वर्ल्ड बैंक से तो नहीं लड़ सकते, हम इनसे तो लड़ सकते हैं ना। ये अगर करें, ऐसे मुआहदे करें, इस तरह के एग्रीमेंट करें, और ये बात जो है, चले मैं आपकी बात, जैसे आपने कहा कि IMF के या वर्ल्ड बैंक के कहने पे प्राइवेटाइजेशन एजेंडे पे आई, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है हिस्टोरिकली, और जो हकायक हैं थोड़े से डिफरेंट है पाकिस्तान में, जब वो नेशनलाइजेशन के बाद जब एक कोलैप्स आया है पूरा, सिर्फ पॉलिटिक्स से ही ताल्लुक नहीं है उसका, आपको भी पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रुक गई, जो इन्वेस्टर थे लोकल इन्वेस्टर भी, यहाँ से कितने इन्वेस्टर जो हैं चले गए थे उसी वक्त छोड़ के बांग्लादेश जाके इन्वेस्टमेंट कर ली थी उन्होंने, अगर आपने वो देखी होगी, एक शाहिदुर रहमान सहाफ़ी थे, तो पुरानी किताब है उनकी, हु ओन्स पाकिस्तान, मतलब कमाल की कहानियाँ उसने लिखी हुई है ना। अच्छा देखिए ना, वो लोग, अच्छा हुआ क्या, मैं उसे जिस तरह कहूँगा, नेशनलाइजेशन जो थी वो जो है ना, मुर्गी जो है ना सोने का अंडा देने वाली, जब उसे ज़िबा कर देंगे तो फिर होगा, तो वो हुआ। और उसके बाद जब वो 77 में जो पॉलिटिक्स हुई, और फिर जो फिर माशाल्लाह लगा, और माशाल्लाह के साथ फिर समझें एक तरह से बहरहाल वो डीनेशनलाइजेशन शुरू हुई, उसे जो भी हम नाम दे लें, लेकिन ये एक हिस्ट्री है बहरहाल, डीनेशनलाइजेशन हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन चीज़ें होने लगी, तो यकीनन एक कुछ ना कुछ हमें खुशहाली शहरों में नज़र आने लगी, और उसके बाद वो खुशहाली की छोटी मोटी लहर, थोड़ी थोड़ी सी ना वेव्स जो थी, वो कुछ रूरल एरियाज में, सबर्बन एरियाज में भी नज़र आई वो, तो एक चीज़ उसमें लगी यहाँ पे, मतलब शहरों में मैं देखता रहा, और मैं मुझे हैरानी भी होती थी इसमें, खुशी भी होती थी कि नई नस्ल है, उसने पेंट शर्ट पहनी हुई है, फिनंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक खुल रहे हैं, बैंक खुल रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर ये चीज़ें फिनंशियल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, बैंक खुल रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिजनेस हो रहा है, तभी ये लोग, अदरवाइज देखें ना बैंक क्या करेंगे, तो वो चीज़ें एक तरह से लगता था जैसे खुशहाली भी आई है। तो नेशनलाइजेशन के बाद जो डी नेशनलाइजेशन और वो पूरा एक पीरियड जो आया, और यकीनन वो हुआ इस तरह के, अच्छा ये भी बड़ी अजीब और गरीब बात है कि हमारे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जुड़ी हुई नहीं है, आप भी मानेंगे इस पर कनेक्टेड नहीं है, देखिए ना, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जब वो नेशनलाइजेशन हुई तो एक स्लोगन होता था नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल, और जब बेनजीर की गवर्नमेंट बनी है 93 में बनी, इतनी हाँ 88 में जब बनी है, तो उस वक्त वही वो जो नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल था, वो आधे सफ़े के अखबार में इश्तहार पीपल्स पार्टी की तरफ से छपते थे, प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल, भाई आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दो नुक्ते नज़र, जैसे होते हैं प्रैक्टिकली सारे मुल्कों में दो बड़ी पार्टीज बन जाती हैं, और दो पार्टीज नहीं होती, दो नुक्ता नज़र होते हैं, दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज होती हैं जिन्हें कॉन्टेस्ट करना होता है, हमारे यहाँ है किसी हद तक, आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा उनमें एक रमक मौजूद है, जैसे हम पीपल्स पार्टी को लेफ्ट लीनिंग कहते हैं, नून लीग को एक राइट लीनिंग कहते हैं, तो इस तरह का तो है इसमें बना हुआ, लेकिन बाज़ोगत हैरानी होती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर आप नेशनलाइजेशन की है आप रुकें उस पर, फिर करें ना, डिलीवर करके दिखाएं उस चीज़ पे अपनी।
जी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन खलील साहब, अगर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर द किंग मेकर, दे आर डिसाइडिंग हु कम्स इन पावर, हु कम्स इन द पावर कॉरिडोर्स एंड हु डजंट कम इन द पावर कॉरिडोर्स, एंड वी सी दिस इवन टुडे राइट नाउ,
विनर्स एंड लूजर्स तय करते हैं, तो
वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस राइट नाउ, हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या किस तरह की इलेक्शन हो रही है, एंड दिस इज नॉट लाइक अ कंस्पिरेसी थ्योरी या एनीथिंग, वी सी दैट इन फ्रंट ऑफ अस, बट बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो उस केस में वो आइडियोलॉजी नहीं रह सकती, बिकॉज अगर आप उस तरह की कंडीशनैलिटी सेट करते हैं, एंड इफ़ यू से कि आप पावर में हम आपको आने नहीं देंगे, इफ़ यू डोंट अग्री टू दीज थिंग्स, तो दे वोंट डू इट देन, राइट? द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, नॉट अकाउंटेबल टू सम एक्स्ट्रा लीगल इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप जितनी भी आप कर लें political parties ko bash kar le, and I will be the first one to agree with you on that. I don't think our political parties mainstream join, I don't think they offer anything substantial, I don't think they have thought through the concerns of the socio-economic concerns of Pakistan. Aap kisi ka bhi manifesto aaj utha ke padh le, they're going into elections, you find nothing.
Agar hoga bhi to dekhne mein wo hoga bas.
Ji bilkul, it's very populist, it's not well thought out, logistics side uski bilkul bhi nahi unhone consider ki hui. So I'm not a big fan of the political parties in Pakistan at all, you know, but I don't think, like, I think when it comes to blaming people for the situation that we're in today, I think you have to start with the entity that has the most power. In our case, this is the security apparatus. Uske baad phir you have other you have the landlords, you have the the big industrialists, mm-hmm. for instance. Mm-hmm. So it is in direct proportion to the power that they hold that mm-hmm. you can blame them. Those two things have to be connected. There are a lot of people say that our culture is bad. In Pakistan, there are lazy people. They don't work hard. They're extremists. This and that. You know, now we have to ask why that is. Extremism, if we talk about it. There are
some reasons.
Yes, of course. We went into the Soviet conflict. We pushed Islamization under Ziaul Haq. We incubated the Mujahideen. We created the kind of culture that is causing so much problems in Pakistan today. So you can't go blame the person who is in the fields picking cotton. Why aren't they more innovative, or why aren't they working hard and improving their situation? You have to look at the broader structural problems.
वो पूरा जो system है उसमें जैसे आपने भी कहा कि politics में भी winners और losers जो हैं वो लोग नहीं तय कर रहे, ठीक है ना? अच्छा इसी तरह जो economy है उसमें winners और losers जो हैं लोग नहीं तय कर रहे, या consumers जिन्हें हम कहते हैं वो तय नहीं कर रहे. मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे फर्ज करें प्राइम मैं और मैं ये कोई आपसे नहीं है, मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ, बहुत सालों से ये बात कर रहा हूँ कि जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट चलें जी रोकती है बहुत से काम करने से पॉलिटिशियंस को, फ़र्ज़ किया मान लिया हमने, क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है कि आप टैक्स रिफॉर्म्स ना करें, आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिफॉर्म ना करें, ठीक है ना? क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है आपको कि प्राइवेटाइजेशन ना करें आप? क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है आपको कि थाना कल्चर तब्दील ना करें? क्या इस्टेब्लिशमेंट रोकती है कि आप जो स्टेट मशीनरी है सरकारी दफ्तरों में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, क्लर्कोक्रेसी बैठी हुई है, सारे जो है वो लोगों को जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, उनको पीपल फ्रेंडली बनाए, कौन रोकता है? एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं रोकती ना. तो ये पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर सकते प्राइवेटाइजेशन? क्या मतलब उनका तो इशू है कि भाई जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें उनको ना करें, ठीक है ना? वो तो पहले ही अलग हो गया, उनको तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं उनकी तरफ, ठीक है ना? लेकिन बाकी जो एसओईज हैं सारी मानती, पीपल्स पार्टी भी कहती है, किसी काफ़ी मतलब कहते हैं कि भाई हम प्राइवेटाइज करेंगे, कुछ चीज़ों को नहीं करेंगे, तो वो क्यों नहीं करते? नून लीग तो है ही उसके हक में पूरे तौर पे, देखिए ना, रोक कौन रहा है इन्हें?
देखिए खलील साहब, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर देम टू बी प्रिवेंटिंग दिस. द वे द सिस्टम वर्क्स इज के इट्स नॉट कि दे डिसअलाउ इट, बट इट्स मोर लाइक वो कहते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू, एंड देन फॉर द रेस्ट यू हैव अ फ्री हैंड, यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू विद दैट. तो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज तो ये देख के कहती हैं कि ठीक है, लाइक व्हाई वेस्ट मनी देन, व्हाई वेस्ट रिसोर्सेज, व्हाई पुट इन थॉट, व्हाई पुट इन एफर्ट एंड एनर्जी, ब्लड एंड स्वेट इनटू फिगरिंग आउट हाउ वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. वी कैन जस्ट एड्रेस दीज फोर पॉइंट्स दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड वी हैव अ प्रीटी गुड चांस ऑफ कमिंग बैक इनटू पावर फॉर नेक्स्ट for the next season, right? So wahi baat hai, ultimately it's an incentive problem.
Abbas sahab, ek jo sawal main, ek Pakistan mein constitution maujood hai, enforced hai. Constitution jo hai wo mandate deta hai इलेक्शन के जरिए जो जीत के पार्टियां आती हैं उनको, ठीक है ना? इनको तो नहीं देता ना
जी,
एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं देता ना. एस्टैब्लिशमेंट तो उनके तहत आती है
जी,
डिफेंस मिनिस्ट्री के जो है पूरी वो काबीना के तहत आएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जो उसके तहत है वो, ठीक है ना? तो ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन की एनसेज की हुई
जी.
अच्छा हम तो देखें ना उसके मुताबिक बात करेंगे ना, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस किसके साथ मिल गए हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं. हम इसको फर्ज करें, मैं छोड़ देता हूँ बिल्कुल, मैं हम इसे एक ट्रांसपेरेंटली हम यूँ देखें चीज़ों को. कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन होगा, आप फर्ज करें जी आप जीत के आ गए, आप करें, ठीक है ना? हम तो आपको पूछेंगे ना, अकाउंटेबल हमें हैं आप
जी.
हाँ तो वो लोग जब कहते हैं ना मुझे कि भाई वो इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है, सारा कुछ वो कर रही है, भाई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती है आपकी. और एक चीज़ मैं ये भी देखता हूँ, आपने भी नोट की होगी, जब कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना केसेस, तो वो किसको बुलाते हैं? सेक्रेटरी, कंसर्न सेक्रेटरी को, या कंसर्न मिनिस्टर को, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को, ठीक है ना? वो उनको नहीं बुलाते ना, क्योंकि एक मतलब गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें एक हायरार्की मौजूद है. मतलब ये अच्छा, हम क्यों इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते? हम क्यों ये कहते हैं जी अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती, और मैं हमारे जो लेफ़्ट है पाकिस्तान का, लेफ्ट के जो ग्रुप हैं, पार्टीज़ हैं, लेफ्ट लीनिंग पार्टीज जो हैं, अच्छा उनकी भी सबकी अप्रोच ये भाई उनसे लड़ाई नहीं बनती है. हमारी लड़ाई इनसे बनती है जिन्हें हमने मैंडेट, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मैंडेट आपके पास है,
ठीक है ना, अच्छा paper,
नहीं नहीं पेपर देखें फिर वही बात है। मैं ये बात इसको इसकी इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व हो गया खत्म हो गया ना फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रगल करेंगे। उनको देखें ना स्टेट्स कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो हमारी स्ट्रगल ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो। अमल किसने करना है? जिन्हें मैंडेट देंगे हम।
बिल्कुल नहीं, बट दैट्स नॉट हाउ इट्स वर्किंग इन पाकिस्तान करंटली, राइट? I think we can agree that the actual power doesn't lie with the political parties.
जो scheme of thing है उसके अंदर ही रह के हम कर सकते हैं ना कुछ।
जी, I mean not necessarily. We can always change things.
कैसे?
Through social movements, through pressure, through bottom-up pressure, through education, through building a culture of resistance and debate and exchange.
फिर वही है कि बहरहाल political parties मौजूद हैं।
जी।
ठीक है ना, लोगों की support भी है उनके पास।
जी।
कुछ ना कुछ support, ठीक है ना उस तरह की।
जी।
अच्छा। फिर वो अच्छा हम जो कुछ और कह रहे होते हैं वो जाके कुछ और कर वो फिर मिल जाती हैं जाके।
जी
ठीक है ना, ए पार्टी बी के खिलाफ जाके उनसे मिल जाती है, बी पार्टी सी के खिलाफ उनसे जाके मिल जाती है, तो फिर क्या होगा?
जी बिल्कुल नहीं, आई थिंक दिस गोज बैक टू आवर कॉलोनियल हेरिटेज एज वेल। जिस तरह हमारा कॉलोनियल एरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चल रही थी बेस्ड प्योरली ऑन अ डिवाइड एंड रूल लॉजिक ऑफ गवर्नेंस, वी नेवर टुक अ लुक एट दैट, वी नेवर ट्राइड टू चेंज दैट। I think we bought that at the end of the day we need to create a system where we have not just a fair system of political contestation but also the feeders into those system. Aap agar bahar ke mulkon mein dekhen where democratic norms are prevalent, you have specific feeders, student unions ke zariye, when people go into student unions they climb the hierarchies and then they go into national level politics. You see this in the US, you see this in Europe and everywhere across the world where democracies are functional. So even these feeders, we don't have any feeders for the political domain in Pakistan. Bilkul bhi nahi hai. It's just these three political parties jo bari le rahi hai ek ek karke. And those are the things that we have to look at and try to change through a bottom up way, in my opinion. Yeah. Not in a top down way, in a bottom up way.
चेंज यकीनन ऊपर से आएगी, आनी तो ऊपर से है, नीचे से मूवमेंट बनेगी, एक प्रेशर बिल्ड होगा, फिर होगा ये, मतलब मॉडल तो यही है लगता, तो यही है बहरहाल अभी तक तो हम यही मॉडल जो है सोच सकते हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का जो इशू है वो हमने एफिशिएंसी के साथ जोड़ के थोड़ा सा उसके वापस पे बात की है। दूसरा, हम इसको अकाउंटेबिलिटी के साथ भी जोड़ें तो बात तो फिर वही चली जाती है कि जब वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन मौजूद नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद नहीं है, फिर तो बात तो फिर ख़त्म हो गई। फिर इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन अगर हम चाहें भी तो नहीं हो सकती।
नहीं, हो तो सकती है, बिकॉज़ वी हैव सीन इट हैपन।
वो हुई है, बिल्कुल हुई है,
हो सकती है, वी हैव सीन इट हैपन। आई थिंक वी शुड नाउ लुक एट द डेटा दैट वी हैव, द एम्पिरिकल फैक्ट्स, वी शुड, एंड आई कैन रीड सम आउट इफ यू'd लाइक, आई हैव सम स्टैट्स टू रीड हियर।
जी जी,
प्राइवेटाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टडी है 1998 की, जिसमें उन्होंने 38 पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की स्टडी की थी that were privatized. They looked at their efficiency levels following privatization. So they found that only 9 performed better following privatization, while 16 performed worse.
What was the period during which that study was conducted?
During the period of the study, I think it was like they looked at 3 to 5 years ke period mein, following privatization. तो उसमें जो है 9 परफॉर्म बेटर, 16 परफॉर्म वर्स। इन द घी सेक्टर ओनली 2 परफॉर्म बेटर एंड 5 परफॉर्म वर्स। इन द राइस सेक्टर 2 परफॉर्म बेटर एंड 6 परफॉर्म वर्स। एंड दिस इज नॉट टू मेंशन द वेरियस इंडस्ट्रीज दैट वर एक्चुअली फोर्स्ड टू शट डाउन फॉलोइंग दिस प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम बात करें, वी सॉ अ बिग प्राइवेटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क व्हाट द पर्पस ऑफ अ फाइनेंशियल सेक्टर इज। द पर्पस ऑफ अ फाइनेंशियल सेक्टर is to boost economic transactions, to improve the ease of doing business and through strategic loans and so on and so forth. We didn't see an increase in GDP levels at all following privatization of the banking sector. If you look today in Pakistan, only 1 in 5 adults over the age of 18 own a bank account. Only 1 in 5. That is a very tragic, that's a big tragedy, I would say. However, the 5 largest banks today own 60% of the profits, the 60% of the deposits and make 80% of the profits, the 5 largest banks. This is a big inequality within the financial sector. Third, energy sector. 1994 power policy was based on this idea that international power producers would come in and they would set up shop, and the government of Pakistan was made to pay for their logistics, the cost of setting up everything, and also ensuring a 15% to 18% guaranteed rate of return, regardless of any fluctuations to the exchange rate, fluctuations to oil prices, anything of that sort, 15% to 18% guaranteed, right? And this was also on the advice of the IMF and the World Bank and so on. So these are important things. इसके बाद जो है वी हैव द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जिसमें PTCL था फॉलोइंग इट्स प्राइवेटाइजेशन इट लेड ऑफ 30,000 ऑफ इट्स वर्कर्स इट्स मार्केट वैल्यू प्लमेटेड बाय 75% लॉस ऑफ $3 billion टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान and the interesting point here is that PTCL was actually a for profit it was making profits before its privatization so I think it's important to look at the statistics like We need to see the initiatives that we took. We need to learn from these. Instead of just mindlessly continuing to privatize without any thought being put into it, we need to look into how we can correct internal managerial dynamics within our state-owned enterprises. Incentives create, key performance indicators establish. There has to be a well-thought-out functional system because it's not like it's an impossibility. Puri duniya mein hum dekh rahe hain. We have the healthcare system of the NHS in the UK, one of the most robust dynamic systems in the world when it comes to healthcare, purely state-run. All things considered, it is generally considered a great example of what a healthcare system could look like if run properly. And then we have the example of Singapore. 85% of housing in Singapore is provided by the government. Very easy access to housing for most of the population over there. We have the Dutch system, their railway sector, for those of you in the audience who are interested in this. The Dutch system, in their railway system, purely state-run, very affordable tickets, very high-quality services, low travel times, is very efficient. So what I'm trying to say is that this idea that privatization is going to be the panacea for all of our ills, I think it's not only a lazy intellect from an intellectual point of view, a lazy approach, but it's also the equivalent of replacing one set of opportunistic elites in the public sector with another set of opportunistic elites in the private sector. So it doesn't really make much of a difference, all things considered.
Pakistan mein to phir wahi jaise democratic dispensation ki baat hai, to isme bhi yahi baat hai.
Aur
main isse yun kehta hu ki jitna careless hamara public sector hai, utna hi careless private sector bhi
hai. 100%
reflection hai na wo uski.
100% totally agree.
Lekin aapne dekhe, cheezein jo hai na, kuch bahut ek long-term view rakhenge cheezon ka na, to shayad फिर कुछ थोड़ा सा वो रिजॉल्व होती नज़र आती
है.
मसलन आपको आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, TNT होती थी, PTNT ना. और मुझे याद है अपने ये बचपन ही है समझे, मेरा ख्याल है जब मैं मैट्रिक में था, जब मैंने टेलीफोन सेट देखा होगा, वो भी हमारे लाहौर में UET है, और उसमें उन्होंने एक नुमाइश से एक म्यूजियम सा बनाया था, तो उसमें एक नुमाइश लगाई थी कुछ ना, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम देखा उस वक्त ना. तो अच्छा, और ये होता था कि आपने एप्लीकेशन दे दी घर में फ़ोन लगवाने के लिए, 10-10 साल लग जाते थे, फ़ोन नहीं लगता. अच्छा, आप PTNT जो थी बिल्कुल प्रॉफिट में थी, कोई मसला नहीं था. एक तो ये कि प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी हमारे पास मयार नहीं है कि भाई अगर एक चीज़ प्रॉफिटेबल है तो उसको प्राइवेटाइज ना करो. अच्छा, हुआ क्या है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, और यकीनन मतलब वो पूरी एनवायरनमेंट चेंज होनी चाहिए ना.
जी, ऑफ कोर्स.
इस तरह तो नहीं है कि अगर एक जैसे PTCL अभी मतलब शॉर्ट ऑफ मोनोपली है, ये के इलेक्ट्रिक शॉर्ट ऑफ मोनोपली है. मोनोपली पब्लिक सेक्टर के पास थी, प्राइवेट सेक्टर के पास थी, बात एक ही है उसमें.
जी,
कोई इतना फ़र्क नहीं, सब्सटेंशियल फ़र्क कोई नहीं आता है ना. तो उस वक्त भी समझे हुआ क्या, बाद में बहरहाल PTCL चले, जैसे भी कुछ थोड़ा सा कंपैरेटिव फ़र्क आया उसमें, उसके बाद आपको भी पता है कि फिर क्या हुआ है. अब आपको वो सिम फ्री मिल जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल. और कितना मतलब अब तो इशू ही नहीं रह गया. और बिल्कुल बड़े मैं देखता हूँ कि मैं मुझे तो इसमें ना देखे एक नज़र आता है कि एक मिरेकल कैसे होता है जब चीज़ें गवर्नमेंट के एक तरह से मोनोपली में से निकलकर, गवर्नमेंट की जो गिरफ्त है उसमें से निकलकर बाहर आती हैं, तो एक मिरेकल होता है. वो मिरेकल क्या था कि पहले लोग किसी के घर फोन लगता था, बाकायदा मुबारक दी जाती थी, खुश होते थे लोग ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया है.
जी.
और अब देखें आपके जिस तरह सिम मिल रही हैं, अगर ये चीज़ ना होती, प्राइवेट सेक्टर के पास ना होती, और कम्पीट सॉर्ट ऑफ कम्पिटिशन भी है, चार पांच टेलीकॉम कंपनीज मौजूद है पाकिस्तान में, PTCL की भी मौजूद है, यूफोन, और आपको पता है यूफोन की क्या स्टेट है, मतलब उसके बिजनेस अफेयर्स जो हैं क्या हैं इस वक्त ना, तो ये जो अगरचे ये भी लिमिटेड कंपटीशन है अभी, तो अगर एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसी हो जिसमें कंपटीशन हो तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो लोगों को ही होता है। देखिए ना, अगर पहले अशराफिया को ही मिलता था फोन और एक सिंबल भी था, है ना, तो अब तो ख़त्म कर दिया गया वो चीज़। अच्छा, दूसरी मुझे बिल्कुल, मैं इसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ हमारे जो एविएशन सेक्टर है, चार पांच एयरलाइन है। अच्छा, कभी फ़र्ज़ करने मैं सोचता हूँ यार वो 24 घंटे लगेंगे लाहौर से कराची जाने, कोई एयरलाइन देखी जाए, अच्छा प्लस माइनस सबका एक है, पता नहीं अब वो उसमें कोल्यूजन है क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकती यहाँ पे एयरलाइन जितनी सारी, के देखे ना जितने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उतना टिकट कम होता जाएगा, और कितने लोग हैं ट्रैवल करने वाले, नहीं मिलती हैं सीट्स, नहीं मिलती, और लोग इसलिए भी बाज़ूकात नहीं जाते, महंगी बहुत है वो। तो अगर एविएशन सेक्टर को भी ओपन करें आप, उसमें कंपटीशन आने दें, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट उसके बेहतर करें आप, PIA को जो प्रिविलेजेस दी हुई हैं वो ख़त्म करें आप, तो क्यों भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। और मेरी ना आवाज़ अब बिल्कुल ये अप्रोच है। अच्छा, एक तो ये कि जो आपने वो स्टडी कोट की अभी, केस टू केस चीज़ें दे होती हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं तो जो केस स्टडी का मेथड है वो तो ज़बरदस्त मेथड होता है। तो उसमें हमें हर केस को देख के हम देख कर सकते हैं उसमें ना कि क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे आए। बिल्कुल है, मैं सारी बातें मानता हूँ, एफिशिएंसी लाई जा सकती है लेकिन एक हद तक लाई जा सकती है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी एफिशिएंसी एक हद तक लाई जा सकती है, और उन्हें बार बार चीज़ें बार बार तब्दील करनी पड़ती हैं। आपको मैनेजमेंट तब्दील कर दी, मैनेजर तब्दील कर दिया, स्ट्रेटजी तब्दील कर दी, नया हायर कर लिया, बिजनेस नई स्ट्रेटजी बनाओ जी, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दो जाके, ये कर दो वो कर दो, ठीक है ना, सारा कुछ करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर भी हमारे इशू सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है, अल्टीमेट मेरा ख्याल है आप भी और मैं भी हम समझते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं लोगों तक पहुंचने चाहिए।
जी जी, ऑफ कोर्स। आई जस्ट हैव अ फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस। एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, मैं कराची से हूँ, मेरा ताल्लुक तो मेरा आना जाना रहता है कराची टू इस्लामाबाद एंड सो ऑन। तो आई रिमेंबर व्हेन फ्लाई जिन्ना केम इन, फ्लाई जिन्ना वाज अ बिग प्रॉमिसिंग सॉर्ट ऑफ एयरलाइन व्हिच इज स्टिल इज, क्वालिटी वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी है, बट आई रिमेंबर उसकी कॉस्ट बहुत लो थी कंपेयर टू द अदर्स ना, बट ओवर टाइम ओवर द कोर्स ऑफ 6 to 9 months और सो वो स्टेबलाइज हो गया बढ़िया। अब तो
मैंने भी देखा था, 15 थी उनकी तो उनकी 27 जा रही थी, लेकिन अब वो देखा तो वही हो गई।
जी जी बिल्कुल, तो वही बात है कि इट वाज़ एबल टू सस्टेन। आई रिमेंबर व्हेन फ्लाई जिन्ना केम इन द टॉक वाज के ओह लुक दिस इज मार्केट, यू नो द फ्री मार्केट ब्रिंगिंग कॉस्ट डाउन एंड सो ऑन, बट इट डिडंट लास्ट long now. Dusri baat ye hai ki if you look at the aviation sector worldwide, what are the best airlines in the world? These are Etihad, Emirates, Qatar, Turkish Airlines and so on, all state run enterprises.
Thai kitni kamal ki hai,
ji ji bilkul bilkul, and these are all state run enterprises. So I'm not in favor of privatization or you know nationalization. I don't really have a strong sort of side that I take on this. All I say is that whatever is happening has to be in line with the interests of the end consumer. Right, there have to be systems in place that ensure that that is always the case. Now, I do oppose this idea of trickle-down economics. Ye jo idea hai ke just free up the market, competition aa jayegi, it'll trickle down to the end consumer. Even within the economics literature, agar aap dekhein, Anwar Sheikh is a great professor at the New School, jinhone iske upar thoda kaam bhi kiya hua hai. So he describes competition as an inverted U-shaped graph. So if you just free the government of all sort of interventions, the markets of all interventions, competition levels will indeed rise, but only up to a certain point. जिसके बाद फिर वो कलूजन शुरू हो जाती है, जिसके बाद कॉम्पिटिशन लिमिट हो जाती है, एंड इट टेंड्स टुवर्ड्स मोनोपोलीज, एंड दिस इज नॉट अ बग, इट इज अ फीचर ऑफ द सिस्टम, राइट? सो हाउ डू यू एड्रेस दैट? Generally, across the world, you address that through what is known as a competition commission, which is a government-run entity that tries to identify when markets are tending towards monopolistic behavior. This is what we saw with China, Alibaba Group. was forced to separate into six standalone units because they were getting too big and they were heading towards that monopolistic behavior. So China is a country that takes this idea very seriously. It prioritizes the interests of the state and its people over the interests of some businessman who is trying to get wealthy. And this is not just a wealthy person in China, but he's recognized worldwide. He's very competitive with all the rich people in the world and so on. But China did not take that into consideration. They were like, this individual's interests are now trumping the interests of our citizenry. So we have to take some sort of decisive action here. Uske alawa, he was also talking about this regulatory environment in China and this and that. Uske upar bhi kafi pushback tha. The corporate interests are not holy. You can challenge corporate interests. You can challenge the interests of big capital in the interests of the citizenry. If you do live in a democracy, waise to I am blog from a Marxist background, I don't believe that democracy and capitalism can coexist. These are opposing forces, as I see it. But you can do, take certain measures to correct perverse tendencies.
Perverse behavior, मतलब जहाँ भी पैदा होता है उसको देखना चाहिए. लेकिन मुझे ना आवाज में बिल्कुल जो एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, मैं रियलाइज करता हूँ उस प्रॉब्लम को, वो कुछ इस तरह है कि एक तो है कि फ़र्ज करें, जैसे आपने बात की, एक तो मतलब वो अली बाबा जो है सिर्फ जैक मा का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. आपको पता है कॉर्पोरेट चीज़ें जब हो जाती हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाती है, तो बड़ा डिफरेंट हो जाता है. उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बहुत पूरा एक रूल्स रेगुलेशन का सेटअप बना होता है और इंस्टीट्यूशन मौजूद होते हैं, रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं जो देख रहे होते हैं ना सारा उसे. अच्छा, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है कि फ़र्ज करें, जैसे आपने कहा कि एक मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर बनने लगता है, होता है बिल्कुल, नेचुरली चीज़ें इसी तरह डेवलप होती हैं, वहाँ जाके फिर कुछ ना कुछ करना होता है. अच्छा, प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है कि हम जिन लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि वो इस मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को चेक करें, क्या वो उनका बिहेवियर तो मोनोपोलिस्टिक नहीं बन जाएगा? उनके भी तो है ना, मतलब प्रॉब्लम मुझे ये लगती है. अच्छा, और मैं इसे उसमें जो हम डिस्कशन पहले भी करते रहे ना, मैं उसे जोड़ता हूँ इसके साथ कि एक तो ये कि मार्केट में जब रिवार्ड और पनिशमेंट का प्रोसेस चलता है तो वो वहाँ पे समझ आ जाती है लोगों को, ठीक है ना. एक बहुत बड़ी मिसाल हम देखें तो टेक कंपनीज, मुझे भी याद है हमें पहले सबसे पहले ना वो माइक्रोसॉफ्ट पे ना अपना ईमेल एड्रेस बनाने ना बड़ा वो होता था. अच्छा, उसके बाद याहू पे एड्रेस बनाना हो गया, ठीक है ना. अच्छा, अब दोनों नज़र ही नहीं आते हैं एक तरह से ना, अब वो जीमेल आ गई. अच्छा, खुद ब खुद चीज़ें, अगर हम फील्ड को ओपन छोड़ें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओपन छोड़ देना चाहिए, रेगुलेशन होते हैं, लेकिन रेगुलेशन किस तरह के होने चाहिए और रेगुलेटर्स के पास क्या 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 पावर्स होनी चाहिए, है ना. बात वही है, अगर वो मिसयूज कर सकते हैं अपने स्टेटस को, अपने एक तरह से मोनोपोली को या मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को, तो जो रेगुलेटर है वो भी अपनी रेगुलेटरी पोजीशन को मिसयूज कर सकता है. इशू सबसे बड़ा मुझे फिर वही जो, और बड़ी ही जबरदस्त बात है, लॉर्ड एक्टन जो है ना वो कोर्ट उसकी के ऑल पावर टेंड्स टू करप्ट. तो इशू ये मुझे जो समझ आती है इसमें कि हमें जितनी कम से कम पावर हम देंगे उतना ही समझे वो करप्शन जो है या मिस यूज अथॉरिटी का जो है वो कम होगा. तो बेहतर है कि अल्टीमेट इंटरेस्ट लोगों का जिस चीज़ में मुझे नज़र आता है उसमें, मतलब ये एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना. मार्केट में जो लोग बैठे हैं ना उनको अपनी इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लेकिन गलत भी हो जाती है और वो नुकसान उठाते हैं. और गवर्नमेंट में लोग जो बैठ के फैसला करते हैं वो भी अपने वो समझते हैं, पता नहीं हमारे पास, हम अथॉरिटी की बुनियाद पे फैसला करें, नॉलेज उनके पास भी नहीं होता. लेकिन वो जब जो भी नॉलेज उनके पास है या अथॉरिटी उसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं तो उसके नतायज बेशुमार लोगों को भुगतने पड़ते हैं.
जी, जो अभी तक जो है इट्स बेस्ड ऑन अ कॉलोनियल मॉडल, तो उसमें ये होता है कि वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स दैट कैन बी यूज्ड to improve the governance arrangements. I'm reading this great book by Acemoglu and Robinson, The Narrow Corridor these days now. So it's a very good book, I'd recommend it to your viewers. Usme wo ye kehta hai ki governance is a process of information flows, not just economic information, but also all kinds of information. And the more you empower civil society, which includes things like free speech, free association, arts and culture, you have things like entertainment services, you have things like trade unions, associations, voluntary groups and so on and so forth. All of these things act as feedback mechanisms for the governing elites to constantly then be responsive to. So you have those feedback loops in place. Now, you mentioned epistemology as well. I did want to talk about the epistemological foundations of neoliberal thought. If you... Because it's important to understand the philosophical backdrop. There are two thinkers that are responsible for this idea that you just free the market and everything will be all rosy and colorful. These are Ayn Rand and... the other one is Friedrich Hayek.
So Karl Popper ko bhi add kar le.
Sure.
Wo balki epistemology wahan se zyada
chalti hai.
Hayek mein bhi hai wo.
I'm talking specifically within the domain of economics, right? Usme ye ke Hayek, his main point, his main paper was called The Use of Knowledge in Society. I'm a big admirer of Hayek, by the way. A lot of people would be surprised to know this.
Theory of dispersed knowledge.
Right. yes. So he said that the nature of knowledge, it has three facets. One, that it is diffuse, it's context specific, and it's largely unarticulated. Diffuse ka matlab hota hai ki it's spread across society. Unarticulated, most people have knowledge but they're not constantly talking about it. And largely context specific means ki like my day-to-day life and my exposures will experience the kind of knowledge in my head. So he concluded from this case, it's pointless for the government to come in and decide on the behalf of the people what to do because the nature of knowledge, right? But however, Hayek was writing this paper, I believe it was the late 40s, early 50s or so, before the advent of the internet. Now, as we know, the internet completely revolutionized the nature of knowledge, its production, its dissemination. I think we're moving towards more like a kind of technologically influenced governance arrangements across the world. We have feedback mechanisms, we have like free flow of information and so on and so forth. Now Hayek could never have anticipated this, so I don't blame him for it, right? So it's important to challenge that because the nature of the internet is such that it has completely changed the way knowledge is produced and shared and talked about and so on and so forth. Now we have things like social media, we have things like citizen portals that can be used to signal information to governing authorities and so on and so forth. If these things are well thought out, then it'll add a level of transparency to the playing field from a governance point of view. The government will be more aware of what the problems are, so then they can respond to those. Pakistan ke case mein, we need devolution of power as well. It's a very important part of this whole thing. So I just wanted to challenge the sort of foundations of neoliberal thought. In light of what we talked about, markets and competition, the fact that tends towards monopoly and so on and so forth.
Hayek ki jo hai theory of dispersed knowledge aur jo aapne bhi baat ki hai na wo pehle internet ke aane se pehle theek hai thi lekin iski ek philosophical iski implications thoda mukhtalif hain. आप इंटरनेट के ज़रिए आप जो डेटा साइंस बन गई है उसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें लेकिन यकीन आप उसे प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर भी बना लेते हैं बन गए हुए हैं ठीक है ना. अच्छा लेकिन जो हाइक का पॉइंट है वो है कि फर्ज़ करें कि एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर दो चार दुकानें हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं उस गाँव में देखिए उनके लिए वही मार्केट है उनके लिए वो इंफॉर्मेशन ही है वो इंफॉर्मेशन शायद किसी के पास भी नहीं है.
जी जी
जो फर्स्ट हैंड जो आदमी मार्केट में बैठा है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा है. और एक बात मैं समझता हूँ कि वो शायद इंटरनेट और इंटरनेट पे देखें ना मिस इन्फॉर्मेशन भी कितनी है
ठीक
है
ना
जी. वो जो डीप फेक वीडियोस और डीप इस किस्म की बेशुमार चीज़ें आ रही हैं तो इसने एक तरह से वो सारी उसकी वो जो पॉजिटिविटी थी उसको माइनस भी कर दिया है. एक लोगों की रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई उस चीज़ पर ना. तो अब भी और ये कहा जाता है कि जो एक सीना बसीना जो इन्फॉर्मेशन चलती है आपने जो बात मुझे बताई मैंने जो आपको बताई हम शायद इस पर ज़्यादा इतबार करेंगे बजाय इसके कि हम वो खबरों में सुने किसी टीवी चैनल पे किसी की यूट्यूब पे चैनल पे देखें किसी और मतलब सोशल मीडिया पे जो चीज़ हम देखें. तो यकीन हाइक की इस सेंस में है वो कि नॉलेज डिस्पर्स्ड होता है वो सारा ना. तो बहरहाल
कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा होता हूं एंड देन चेक माय फोन मुझे उसका ऐड आ रहा होता है. Yeah, so the corporations are very good at detecting this, you know.
Achha,
I don't even
wo,
like
talk about it. business model. Achha, I don't mind ke, main is cheez ko ek tarah se na is tarah appreciate karta hu. Mujhe yaad hai, maine Australia mein, Sydney University mein मतलब भेजा अपना अपने एक बनाया गया ना एप्लीकेशन वगैरह भेजी मेरा वहाँ पे, उन्होंने सिनॉप्सिस अप्रूव भी कर दिया था और मेरा एडमिशन भी हो गया था वहाँ पे। अच्छा पता क्या होता था, अच्छा मैं लेटर लिखता था उसको, लेटर को जाके जीपीओ से लाहौर में पोस्ट करता था। अच्छा। तकरीबन दो हफ्ते कम अज़ कम
जी
पहुँचता था वो, महीने बाद फिर दो हफ्ते बाद वहाँ से जवाब आता था। अच्छा इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया जब मैं ईमेल भेजता था, सेकेंड में ईमेल चली गई और ऑलमोस्ट फ्री है वो सब कुछ।
जी जी
ये क्या चीज़ है, हमें देखिए ना कोई ना कोई बिजनेस मॉडल तो है ना, हमें तो नहीं चार्ज कर रहे वो।
Sure.
लेकिन अगर हमारी इंफॉर्मेशन को एक वो बिल्कुल जो एक रोबोटिक टाइप का कंप्यूटर पीछे बैठा है वो प्रोसेस करके आज इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना हमें,
of course,
अगर हमारा डेटा हमारी प्राइवेसी कहीं पे अब्यूज होती है मिसयूज होती है फिर तो इशू बनता है।
of course.
जो हमारे यहाँ तो होती है, हमारे यहाँ तो स्टेट भी और दूसरे इदारे भी करते होते इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। बहरहाल तो ये चीज़ें हैं, आप कुछ और अगर कहना चाहते हो नहीं तो हम फिर इसे कंक्लूड करें अपनी आज की जो गुफ्तगू है।
नहीं जस्ट ऑन दैट आई जस्ट वांटेड टू से कि जो ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बिग डेटा में blockchain and so on and so forth, I'm just saying that just like they're used in a very central sort of a way to for targeted advertisement and so on, I'm just saying that we can use those same technologies to improve our governance arrangements and a lot of countries, Switzerland is a great example of a country that does this very well, a very participatory democracy वहाँ पे। जी
नहीं मैं बिल्कुल rule out नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। देखें हमने जो एक चीज़ है जो आपने भी महसूस की, मैंने भी आपने महसूस की है कि हमें हर वक्त चीज़ों को ओपनली देखना चाहिए।
ऑफ कोर्स
ठीक है, हमने अपने कुछ अजम्पशंस बनाई होती हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लेकिन हमें ओपन होकर देखना चाहिए और यकीनन तो तभी हम लर्न और जो लर्निंग का प्रोसेस है मुसलसल उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट के मामलात हैं उसमें चाहे एफिशिएंसी का मामला हो, अकाउंटेबिलिटी का मामला हो, कोई और मामला हो, उसमें अहम चीज़ है कि भाई जितनी कम पावर गवर्नमेंट के पास होगी उतनी कम वो अब्यूज़ होगी। ठीक है ना, इससे तो
एग्री अच्छा
चले हो सकता है, लेकिन देखिए ना वही
जो एक अब्यूज्ड इफ इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, आई डोंट थिंक इट वुड बी अब्यूज्ड इफ इट्स अ जेन्युइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम।
हां आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम मिसयूज हो सकती है या कहीं कोई एक दो लोग आ जाएंगे जो। और अच्छा ये भी ना बात बड़ी मुझे याद आ गई आपने की है, तो कार्ल पॉपर का जो है इस पे जो सारा उसने किया है काम, वो कहते हैं कि आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि जिसमें अगर कोई गलत आदमी भी आ जाता है तो उसे कम नुकसान पहुंचा सके।
यस फॉर श्योर, नहीं दैट आई एंटायरली एग्री विद फॉर
श्योर। हमें जो रूल्स लॉज और रेगुलेशंस हैं वो ऐसे बनाने होंगे,
ऑफ कोर्स,
और क्योंकि आप रूल आउट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, इंसानी मामलात हैं इसमें, ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं।
बिल्कुल फॉर श्योर।
तो जो ये अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, इसमें बिल्कुल ओपन गुफ्तगू हर एक के साथ। देखें फिर वही बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को भी इस चीज़ पर आना चाहिए कि आप तशद्दुद की धमकी इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके मुज़ाकरे मुकालमे गुफ्तगू की तरफ आएँ, इसी से हल निकलेंगे जितने भी मामलात हैं, जितने तनाज़े हैं, जितने मसाइल हैं, उनका हल यही निकलेगा। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं है, तशद्दुद तशद्दुद को ही जन्म देता है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन वाला मामला भी है तो इसे सिर्फ ये कि गवर्नमेंट सर्कल्स में ही नहीं या जो पॉलिसी मेकर्स के सर्कल्स हैं उसमें ही डिस्कस नहीं होने चाहिए, इसे लोगों में भी जाकर डिस्कस होने चाहिए, टीवी चैनल्स पर, अखबारात पे, जो सोशल मीडिया की डोमेन है वहाँ भी डिस्कस होना चाहिए इसको। तो इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा।
हाँ
भाई नहीं, इसके साथ ही हम अपनी आज की जो गुफ्तगू है उसे ख़त्म करेंगे। शुक्रिया।